તારીખ 31/3/1997, ડાયરીના બોલ નંબર 481 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 39.
આત્મ સ્વભાવ સહજ પરમ પવિત્ર છે. તેવા સ્વભાવની દૃષ્ટિબંધ ધર્માત્મા દોષથી તરીને નિર્દોષ પરિણામે પરિણમવાની કળામાં પ્રવીણ હોય છે. આત્મા કા મૂળ સ્વરૂપ હૈ તો સહજ પરમ પવિત્ર હૈ, મેને પૂરા પર પવિત્ર હૈ. ऐसे स्वभाव का जो दृष्टिबंध है, उस स्वभाव की जिसको दृष्टि है वो धर्मात्मा है. और दोष से निर्दोष होने की कला परिणमन में उनको होती है. गुजराती में कम समझ में आता है ना,
है? आता है ना गुजराती में समझ में?
आता है बराबर.
वो पापा को समझ में नहीं आएगा.
हाँ हाँ. जो पवित्र स्वभाव के दृष्टि वाले धर्मी जीव होते हैं, तो दोष को मिटा करके निर्दोष परिणाम कैसे हो, उस कला में वो पारंगत होते हैं. चाहे जैसे प्रकार के पूर्व कर्म के उदय के बीच में उदय ने घेर लिया हो,
घेर लिया हो
और खुद को पूर्ण पवित्रता नहीं हुई हो, अभी तो संसार में है तो कोई पूरी पवित्रता तो नहीं है. जैसे सर्वज्ञ को होती है, जिनेन्द्र को होती है, ऐसा होने पर भी
जी
परम पवित्र स्वभाव के अभेद अनुभव की कला में, यानी निर्दोष होने की कला में, कला के सर्व प्रकार उनके परिणमन में गर्भित रूप से समाविष्ट होता है. क्या कहने का आशय है उसमें कि आगे जा करके वही परिपूर्ण वितराग हो जाएगा, जिनेन्द्र पद को प्राप्त हो जाएगा खुद ही. तो उसमें तो परिणमन की तो एक ही परिस्थिति है, एक ही विधि है, एक ही पद्धति है कि अपने पवित्र स्वभाव का अभेद अनुभव करें. वो एक ही पद्धति है, प्रारंभ में भी वही है, आगे बढ़ने में भी वही है, पूर्ण शुद्ध होने में भी, पूरा शुद्ध होने में भी वही पद्धति है. एक ही पद्धति है, दो प्रकार की पद्धति नहीं है. इसलिए ऐसे अभेद अनुभव की कला में, यानी कि निर्दोष होने की कला में, उसमें सर्व प्रकार आ जाता है. न्याय के जो अलग अलग प्रकार है वो सब उसमें गर्भित है. न्याय अनेक प्रकार के होते हैं. लेकिन स्वरूप में अभेद होने की कला में सभी बात आ जाती है. न्याय में वो बात है कि हम भिन्न हैं, न्याय में वो भी बात है कि दो काल में जैसा होने वाला है वही होता है। जैसे देखी बीत राग ने है वही होता है, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में तो आगे से आ गया
जी।
तो वो भी एक न्याय है, हम भिन्न है वो भी न्याय है, अनेक प्रकार के न्याय है, सभी न्याय निर्दोष होने के हैं। नहीं समझ में आते तो क्या होता है, तो नहीं समझ में आए तो कुछ लेना चाहिए, सत्संग में उसकी चर्चा निकाल करके समझ लेना चाहिए। जितने भी न्याय हैं वो सभी न्याय निर्दोष होने के लिए ही है, जितने भी न्याय हैं वो निर्दोष होने के, दोष मिटाने के लिए है। लेकिन वो सभी न्याय स्वरूप का अभेद अनुभव की कला में समाविष्ट हो गए हैं। जिसको वो कला आ गई उसको सब बात आ गई। धीरे बोलता
है, मम्मी तो चर्चा ऐसी चली थी इसकी कि देखा तो बुद्धि किस प्रकार से तोड़ना, उसका प्रयास किस तरीके से करना।
एकत्व और भिन्नत्व परस्पर विरुद्ध है, तो भिन्नत्व का अनुभव करो, एकत्व तोड़ने के लिए भिन्नत्व का अनुभव करो, और भिन्न है उसका भिन्न अनुभव करना है। अभिन्न होता और उसका भिन्न अनुभव करने का होता तब तो दिक्कत की बात है, कि भी अभिन्न हो गया है कैसे भिन्न अनुभव करे। लेकिन कोई चीज कोई चीज से मिली तो नहीं है, न ज्ञान राग से मिला है न राग ज्ञान रूप हुआ है, न शरीर आत्मा रूप हुआ है न आत्मा शरीर रूप हुआ है। दूध में पानी डाला तो भी पानी तो पानी रहा है, पानी दूध थोड़ा बन सकता है। तो जो भिन्न है उसको भिन्न अनुभव करना है। पानी में मिट्टी डाल दी, पानी मैला हो गया, क्या बोलेंगे, पानी मैला हो गया। तो पानी मैला हो सकता है क्या, क्योंकि मिट्टी तो पानी रूप हुई नहीं, मिट्टी मिट्टी रही, पानी पानी रहा है। पानी अपना स्वरूप छोड़ करके मिट्टी नहीं बन गया, पर मिट्टी पानी बन नहीं बन गया। तो जो भिन्न है उसको भिन्न रूप में अनुभव करना है, वही एकत्व तोड़ने का प्रयोग है। एकत्व कैसे तोड़े, यही एकत्व तोड़ने का प्रयोग
है। दृष्टि बदलनी है, देखने की दृष्टि बदलनी है।
हाँ, हाँ, वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए, और समझ करके उस समझ को अपने परिणमन में लागू करना चाहिए, तभी तो प्रयोग होएगा। समझ का उपयोग क्या, समझ का प्रयोग क्या, कि उदय में लागू करे, वही इसका प्रयोग है। जैसे कि वेदना है शरीर की, असाता वेदना है, किसकी है, परमाणु की है, आत्मा तो जानता है उसको। वेदना का ज्ञान में प्रवेश नहीं हो सकता, जगह ही नहीं है ज्ञान में। वेदना का ज्ञान में प्रवेश होने की, ज्ञान में तो जगह नहीं है। तो ज्ञान तो भिन्न रह करके जानता है, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि हमारे में वेदना हो रही है, हमारे में नहीं, हमारे में जानने का होता है। जैसे हम अग्नि को जाने तो हमारा ज्ञान गर्म नहीं होता, ऐसे बुखार आने से भी हमारा ज्ञान तो गर्म नहीं होता, होता है क्या? बुखार तो शरीर को आता है, लेकिन हम क्या अनुभव करते कि मेरे को बुखार आया? ज्ञान को तो टेम्परेचर आता नहीं। तो उस तरह से जो तुम्हारा प्रश्न है कि एकत्व को कैसे तोड़ना, तो जो भिन्न है उसको भिन्न रूप अनुभव करो, अनुभव नहीं हुए तो अनुभव का प्रयास करो, प्रयास करने से सफलता होती ही है। प्रयास जहाँ तक सफल नहीं हुए वहां तक लगातार चालू रखना, बस उतनी सी बात है।
ऐसा बताइए कि प्रयास करने
में
किसी प्रकार
स्वच्छ
नहीं हुए।
हाँ, स्वच्छ ऐसे नहीं हुए कि भक्ति भाव रखना, ऐसा नहीं लेना गुरु मेरे से भिन्न है, वहाँ ऐसा नहीं लेना, वहाँ अभिन्न भाव रखना
जी।
क्या मेरी आत्मा में और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वहाँ ऐसा लेना, तो फिर स्वच्छ नहीं होएगा। कृपालु देव क्या लिखते हैं, संत यानी श्री गुरु और परमात्मा जिनेन्द्र परमात्मा और अपने आत्मा, तीनों में कोई अंतर नहीं है। तीनों में अभिन्न बुद्धि रखना, भेद बुद्धि नहीं रखना, अभिन्न बुद्धि रखना।
आपके वियोग में रहना चाहिए। मैं दिन भर में ऐसा विचार करता था कि आपके मेरे को आपके वियोग में रहना चाहिए।
ठीक है,
यानी जब मैंने होमवर्क नहीं किया तो मेरा अहंकार भी नहीं है कि मैं संयोग कर रहा हूँ।
बात तो ठीक है, न्याय की बात है। अब तुम होमवर्क करेगा तो तुमको कहना भी नहीं पड़ेगा, फिर कहने का अवसर भी नहीं रहेगा। ठीक है, करो तैयारी। ठीक बात है, वो भी एक ट्रीटमेंट है, संयोग भी एक ट्रीटमेंट है और वियोग भी एक ट्रीटमेंट है, ये पार्ट है ट्रीटमेंट का, वन ऑफ द पार्ट्स, ये भी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। ठीक है,
इसको वैसे पॉजिटिव थिंकिंग कहेंगे, गुरु की हर बात को अपने ये हित में लेना आपको पॉजिटिव थिंकिंग कहेंगे।
हाँ, वही पॉजिटिव थिंकिंग है। खास करके अविरत सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के जीवन चरित्र जो होता है तो इस प्रकार को प्रसिद्ध करता है। किस प्रकार को? कि वो कर्म के उदय के बीच में है, कभी कभी गिर जाते हैं, पूर्ण वितरागता तो उनको है ही नहीं, अब तो वितरागता की शुरुआत है, वहाँ तो चतुर्थ गुण स्थान में गृहस्थी में, फिर भी वो अपने स्वभाव में अभेद अनुभव कर सकते हैं, उदय से भिन्न रह सकते हैं और कर्म की निर्जरा अच्छी तरह कर लेते हैं। वो साइंटिस्ट का रिसर्च है, वो साइंटिस्ट लोगों का वो रिसर्च है कि गोलाई होने पर भी सेकंड का फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड कुछ अंश में वो अगर स्थिर रहता है तो बस उसको स्पीड दे दो, वैसे ही स्पीड में पूरा पूरा घंटा दिन घंटों तक दिनों तक महीनों तक फिर रह सकता है, रह सकता है कि नहीं? ये जो साइकिल का टायर है वो नीचे गोल है, तो फ्लैट अगर हुए वो तो बराबर रहता है जमीन पर, गोल चीज तो रहती नहीं ना, कहीं इधर लुढ़क जाएगी या इधर लुढ़क जाएगी, फिर भी सेकंड के कुछ अंश में वो स्थिर रहता है, बाद में ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं रहता है वो बात नहीं है। उस पर से वो साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि ठीक है, ऐसे आधा सेकंड को पाव सेकंड पाव सेकंड पाव सेकंड पाव सेकंड करके कितना भी रख सकते हैं, अगर पाव सेकंड रहता है तो दूसरी पाव सेकंड रखो, फिर तीसरी पाव सेकंड रखो, ऐसा करके कितना भी टाइम हम निकाल सकते हैं। तो उसको स्पीड दे दिया
जी।
क्या क्या
स्पीड दे दिया?
बस तो स्पीड में वो रहता है, गिरता नहीं।
साइकिल का आविष्कार हुआ
है,
ऐसा आविष्कार हुआ।
हाँ, ऐसे साइकिल का रिसर्च हो गया
जी।
साइकिल मैंने क्या घुमाना, एक ही चीज को घुमाना, उसको कहते हैं साइकिल। जैसे हम कोई चीज दो तीन चीज को इस्तेमाल करते हैं एक क्रम से, तो क्या बोलते हैं कि भाई उसको तो साइकिल कर दिया है, पहले ये बाद में वो फिर वो फिर वो क्यों आएगी। ऐसे उसको दे दिया तो उतना उतना हर हर इसका जो बॉटम है उतना स्थिर रहेगा, उतना स्थिर रहेगा, उतना स्थिर रहेगा, रह गया जितना चाहो उतना। फिर ऐसे वो तो एक बात हुई भौतिक पदार्थ के, अब उसको अध्यात्म में ले जाते हैं कि जब ज्ञानी क्षणार्थ के लिए स्वरूप में लीन हो सकते हैं तो हम इसके लिए क्यों नहीं हो सकते हैं। इसके साइकिल का व्हील है वो पांच सेकंड रह सकता है जमीन पर, तो हम इसके लिए क्यों नहीं रह सकता है, उसको साइकिल दे दो, साइकिल में दे दो उसे। ऐसे पांच सेकंड भी अगर स्वरूप में लीन हुआ जा सकता है तो हम इसके लिए क्यों नहीं हुआ जा सकता है, उसको स्पीड दे दो। ऐसे हाँ, उसका नाम ध्यान है, चलाने का अभ्यास का नाम ही ध्यान है, और क्या है, उसी का नाम ध्यान है।
स्वरूप ग्रहण शक्ति के वजह से स्पीड
इसकी स्पीड है।
अपनी जानन शक्ति को पकड़ के, जो अपनी ज्ञान की जानन शक्ति है ना उसको पकड़ के उसी में अपना अंदर का दिमाग
हाँ शक्ति को पकड़े, शक्ति को पकड़ना है।
वैसे यही सिद्धांत संसार में लागू पड़ता है, संसार में भी एक जगह नहीं रहता है जीव, संसार में भी जीव एक जगह नहीं रहता है, यही संसार में लागू पड़ता है।
संसार में तो अपना जगह नहीं रहता है, तो बदलता है, यहाँ तो एक ही स्वरूप में है,
कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ जो आपने साइकिल कर दिया एक जगह कुछ समय से मतलब सकती उससे ज्यादा नहीं, ऐसी परिणामों का ये चाल है, एक जगह नहीं रह सकता है।
परग्नि में नहीं रह सकता है, स्वग्नि
में रह सकता
है, क्योंकि परग्नि में जाना वो विभाव है और स्वग्नि में रहना वो स्वभाव है।
परग्नि में तो कभी भी कोई सीमा छूटेगा, हर गेम में जितना जाएगा किसी ना किसी तरह वो वहां से छूटेगा,
ले सकता है। शांति है ना वहाँ, उधर अशांति होती है इधर शांति होती है, तो शांति में तो टिकेगा, अशांति में कहाँ से टिकेगा। तो धर्मात्माओं के जो जीवन चरित्र है वो इसी बात को प्रसिद्ध करता है। हाँ, शक्ति छे, शक्ति आवेगी, उपयोग कौन छे ने, लब्धि छे ने उपयोग कौन छे। तेमा उसमें भी कोई विशेष प्रज्ञावंत पुरुष ज्ञानी, ज्ञानी में कोई सामान्य ज्ञानी होते हैं जो अपना काम करते रहते हैं, कोई विशेष प्रज्ञावंत भी होते हैं जो अपने अंतर परिणमन को व्यक्त करते हैं, कर सकते हैं। कोई तो ऐसा है कि अपने अंतर परिणति को व्यक्त भी नहीं कर सके, लेकिन कोई ऐसा है कि जो अपने अनुभव को प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो वैसी अभिव्यक्ति मुमुक्षु जीव के लिए, पात्र जीव के लिए खास करके, उसको पहचानने के लिए बहुत उपकारी होती है। ऐसी अभिव्यक्ति है वो पहचानने के लिए पात्र जीव को लिए बहुत उपकारी होती है। परम कृपालु श्रीमद् राजचंद्र देव के पत्रों में से ये इस प्रकार का रहस्य जानने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरंग दशा को कहीं पत्र में व्यक्त करी है। और वो उदय में बहुत रहते थे, उदय में भी रहते थे, बहुत बड़ा बिजनेस था बंबई में, जवाहरात का तो था ही, और भी कई प्रकार के कमीशन के काम थे, और उस जमाने में विदेश के साथ बिजनेस करते थे, वो चीन के साथ, फ्रांस का, बर्मा का, तो आता है चिट्ठी। तो वो रहस्य जानने को मिलता है कि वो उतने उदय के बीच में होते हुए भी कैसे पुरुषार्थ करते थे, स्वरूप का पुरुषार्थ कैसा चलता था, सहज चलता था। यह परम हितकारी तत्व क्या है, वो रहस्य क्या है, पात्र जीव के लिए तो परम हितकारी तत्व है। यह परम हितकारी तत्व प्रकट रूप से नजर आ जाए, ऐसा अद्भुत और अलौकिक प्रकार है उनका। जो प्रकार है वो ऐसा है कि ये मुमुक्षु के लिए नजर में आ जाए। नहीं, वो तो वहाँ बात की है तब तो निकलता है ना, जब उन्होंने नहीं लिखी तो अपन कहाँ से पता चलता है। अगर वो नहीं लिखते अपनी बात तो क्या, कैसे कोई समझ सकता है, लिखी है तो समझ सकते हैं। परम हितकारी तत्व मैंने उसका परिणमन प्रकट रूप से नजर आए, ऐसा अद्भुत और अलौकिक प्रकार है, और उसके वचन योग भी ऐसे ही है। वचन योग भी ऐसा है और परिणमन भी ऐसा ही है। अभी तो प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए परिणमन को देखने में नहीं आए, लेकिन वचन योग के दौरान परिणमन को पकड़ सकते हैं। उतना वचन में सातिशय पड़ा है, उसको वचन अतिशय कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन अतिशय कहते हैं। अतिशय क्षेत्र रहता है ना हमारे यहाँ, उसको चमत्कार कर दे। हम जाएंगे तो कोटा के पास में चांद खेड़ी के बाबा नहीं, वो तीर्थंकर का प्रतिमा है, मानते हैं ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार। ये चमत्कार ऐसा है कि आत्मा को परमात्मा का दर्शन करा दे, इससे बढ़िया चमत्कार कोई जगत में है ही नहीं। वर्तमान में आत्मा को परमात्मा का दर्शन करा दे और दर्शन होने के बाद आत्मा को परमात्मा बना दे, जो संसार का पामर प्राणी है उनको तीन लोक का नाथ बना दे, ऐसा वचन योग है। इसलिए उसको सातिशय वचन योग कहने में आता है। इसलिए कहते हैं ना, जो भगवान की या गुरु की स्तुति करते हैं तो ऐसा ही कहते हैं कि पारसमणि है वो तो लोहा को सोना बनाता है, क्या करता है? लोहे को सोना बनाता है, लेकिन आप तो वैसे पारसमणि हैं कि लोहे को पारसमणि बनाते हैं, सोना नहीं बनाता है, लोहे को भी पारसमणि बना देते हैं। सोना तो हल्की चीज है, वो तो एक पारसमणि में से अनेक पारसमणि ऐसा बनता है। तो यही परंपरा भी चल रही है। भगवान महावीर स्वामी सिद्धालय में चल बसे, 2500 साल हुई, फिर भी वो बात सिद्धालय में जाने की अभी चालू है। यही कारण है कि उसमें से एक पारसमणि में से दूसरे पारसमणि, दूसरे में से तीसरे बनते ही रहे, यही कारण हुआ।
जलती ज्योत है जिसको जलाना हो,
हाँ बस ज्योत में से ज्योत जलती रही, ये बात बनी।
परंपरा चालू
है। कलाएं गर्भित है निर्दोष होने के, तो निर्दोष होने की कला तो न्याय में है, सभी न्याय उसमें गर्भित है। क्यों? कि न्याय का अधिपति तो न्यायाधीश है। न्याय का अधिपति कौन है?
न्यायाधीश
है, और न्यायाधीश दृष्टि के कब्जे में आ गया, सम्यक दृष्टि के, दृष्टि के कब्जे, दृष्टि ने कब्जा कर लिया उस पर। वो तो मुमुक्षु को आ जाता है, वो तो मुमुक्षु को पर प्रेम प्रवाह बड़े प्रभु से सब आगम भेद सो उर्वश है। तो मनुष्य की भूमिका में उतनी तो निर्मलता आती है। ये तो स्वरूप में अभेद होने की कला है, तो फिर उसमें कौन सा न्याय बाकी रह गया? कोई नहीं। और सभी न्याय वहां ही ले जाने के लिए है, और जो वहां चले गए वहां से सभी न्याय निकले। देखो ये करामत जो मुमुक्षु है उनको तो सभी न्याय वहां ही ले जाता है, और जो वहां पहुंच गए तो वहां से सभी न्याय निकलने लग गए, बाहर आने लग गए, क्योंकि अनंत नयों का भंडार वो है, अनंत ज्ञान का मैंने अनंत नयों का भंडार वही है, अक्षय भंडार है, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, ऐसे अक्षय पात्र में से खूबता नहीं, वैसे अनंत काल से ज्ञान का प्रवाह ज्ञान भंडार में से चालू निकल रहा है। क्या फर्क पड़ा ज्ञान भंडार में? कुछ नहीं, एक अंश मात्र भी फर्क नहीं रहा, उतना का उतना है। जितने अनंत सामर्थ्य अनंत काल पहले थे, अनंत प्रवाह निकलने के बाद, अनंत ज्ञान निकलने के बाद, उतना का उतना है, इंटैक्ट, कोई फर्क नहीं। ये अवलंबन का विषय है, ये आधारभूत पदार्थ तो वही है, उसका अवलंबन ले लिया उसको जगत में किसी की परवाह नहीं है। जिसने अपना अनंत शक्ति का स्रोत जहां से निकलता है उसका आधार ले लिया, उसको फिर कोई जगत में किसी की परवाह नहीं होती।
आधार
ले लिया, स्वयं ऐसा है कि जिसकी शक्ति की कोई हद नहीं है, बेहद शक्तिवान है, जिसकी महिमा जिनेन्द्र के दिव्य ध्वनि कर नहीं सके, कि महिमा इतनी बड़ी है, दिव्य ध्वनि बोलती है कि मैं छोटी पड़ती हूं इसके आगे, मेरी पहुंच नहीं है। तो इतना कहकर के उसको छोड़ देना पड़ा महिमा को। छदमस्त ज्ञानी कितनी बात करेगा, जब केवल ज्ञानी दिव्य ध्वनि में नहीं कह सके, छदमस्त ज्ञानी क्या बोलेगा, कितना बोलेगा। महिमा का समुद्र है, कितना महत्ता का समुद्र, इतनी बड़ाई है, इतनी महत्ता है, कि ये जो भाषा में उसकी बड़ाई आती है, ये तो समुद्र में से एक चम्मच भर पानी है, कितना, एक चम्मच भर पानी है, कितना पानी लिया समुद्र में से, एक चम्मच, क्या फर्क पड़ा, क्या पता ही नहीं पड़ा, उतना महान पदार्थ है।
Thank you. जय हो सनातन जय हो।